ਰਮੋਲੋਏ ਸ਼ੋ ਤ੍ਰਿਕਾਲ ਵਰਤੀ ਅਰਹੰਤਾਣ ਰਮੋਲੋਏ ਸ਼ੋ ਤ੍ਰਿਕਾਲ ਵਰਤੀ ਸ਼ਿਦਾਨ ਰਮੋਲੋਏ ਸ਼ੋ ਤ੍ਰਿਕਾਲ ਵਰਤੀ ਆਇਰੀਆਣ ਮਣਮੋਲੋਏ ਸ਼ੋ ਤ੍ਰਿਕਾਲ ਵਰਤੀ ਉਚਾਣ ਰਮੋਲੋਏ ਸ਼ੋ ਤ੍ਰਿਕਾਲ ਵਰਤੀ ਸ਼ਵ ਸ਼ਾਮਣ ਓਂਕਾਰ ਬਿੰਦੂ ਸੰਯੁਕਤਮ ਨਿਤਿਯਮ ਜਾਯਂਤਿ ਯੋਗਿਨ ਕਾਮਦਂ ਮੋਕ್਷ਦਂ ਚੈਵ ਓਂਕਾਰਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ಮಂಗಳಂ ಭಗವಾನ್ ವೀರೋ ಮಂಗಳಂ ಗೌತಮೋ ಮಣಿ ಮಂಗಳಂ ಕುಂದಕುಂದಾರ್ಯೋ ಜೈನ್ ಧರ್ಮೋಸ್ತು ಮಂಗಳಂ ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ಸರ್ವಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರಕಂ ಪ್ರಧಾನಂ ಸರ್ವಧರ್ಮಾಣಂ ಜೈನಂ ಜಯತು ಶಾಸನಂ ನಮಃ ಸಮಯಸಾರಾಯ ಶ್ವಾನುಭೂತ್ಯಾ ಚಕಾಶತು ಚಿತ್ಸ್ವಭಾವಾಯ ಭಾವಾಯ ಸರ್ವಭಾವಾಂತರಚ್ಛಿದೇ ಏಗೋ ಮೇ ಶಾಶ್ವತೋಪ್ಪ ಜ್ಞಾನ ದರ್ಶನ ಲಕ್ಷಣ ಶೇಷಾ ಮೇ ಬಾಹಿರ ಭಾವ ಸವೇ ಸಂಯೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಮಾರೋ ಸುಶಾಶ್ವತ ಏಕ ದರ್ಶನ ಜ್ಞಾನ ಲಕ್ಷಣ ಜೀವ છે ಬಾಕಿ ಬದಾ ಸಂಯೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಭಾವ ಮುಸ್ತಿ ಬಾಹ್ಯ છે ಹೂ ಏಕ ಶುದ್ಧ ಸದಾ ರೂಪಿ ಜ್ಞಾನ ದರ್ಶನ ಮೈ ಕರೆ ಕೈನ್ಯ ತೆ ಮಾರು ಜರಿ ಪರಮಾಣು ಮಾತ್ರ ನಥಿ ಅರೆ ಜೆ ಜಾಣತೋ ಅರಂತ ನೆ ಗುಣ ದ್ರವ್ಯ ನೆ ಪರ್ಯಯ ಪಣೆ ಜೆ ಜೀವ ಜಾಣೆ ಆತ್ಮನೆ ತಸು ಮೋಹ ಪಾವೆ ಲಯ ಕರೆ નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક ના એક ભાવ છે એ રીત શુદ્ધ કથા એને જે જ્ઞાત તે તો તે છે જેમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદ કરે જાણે જે કર્મ ઉદય નિદ્રા બંધ તેમજ મોક્ષ નહીં રૂ અચલ ને અનુપમ ગતિ પામેલ સર્વે સિદ્ધ ને વંદી કહું સુત કેવળી કથિતા સમય પ્રાપરૂ કહો સ્થાપ નિજ ને મોક્ષ પંથે જ્યાં અનુભવ દેહ ને તેમાં આજ નિત્ય વિહાર કર નહીં વિહર પર દ્રવ્યો વિશે ઓમ શ્રી નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય અપની જો મોના દ્વારા 8 દિન કી જો શિબિર અષ્ટાનિકા પર્વ મેં લગાઈ હૈ ઉસકા 5વા દિન હૈ ઇસમેં जो विषय चुना गया है वो चारों अनुयोग का विषय है। चारों अनुयोग का तात्पर्य वितरागता है, चारों अनुयोग का सार उसमें से जो निकाला जाए तो वितरागता प्रकट करना वो चारों अनुयोग का सार होता है। उसमें ये प्रथमानुयोग और चरणानुयोग का सेशन ये 4 दिन में पूरा हो गया, अपने देवेंद्र जी और अभय कुमार जी ने ले लिया और अभी ये द्रव्यानुयोग और करणानुयोग का आज से शुरुआत हो रही है 4 दिन के लिए। तो ये जो द्रव्यानुयोग की चर्चा जो है वो मुझे गुरुदेव श्री ने से 45 सालों तक जो अविरत प्रवाह से द्रव्यानुयोग का मुख्यतया प्रतिपादन किया है, उसके साथ साथ में सभी अनुयोग चलते ही रहते हैं। चरणानुयोग करणानुयोग प्रथमानुयोग की बातें भी कोई प्रवचन में गुरुदेव के प्रवचन में नहीं आती, ऐसा नहीं होता है, मगर उसकी मूल जो धारा चली पूज्य गुरुदेव श्री की जो सिमंदर भगवान की देशना का जो सार आचार्य भगवान के जो शास्त्रों में आया और वो शास्त्रों में से अपना खुद पूज्य गुरुदेव श्री ने शास्त्रों का बहुत मंथन करके आचार्यों का हृदय समझकर अपनी निज परमात्मा निधि अंदर में एक नायक देव सुधात्मा जो विराजमान है उसकी उसने प्राप्ति करके जो भी बात कही तो उसमें उसको द्रव्यानुयोग की विशेषता अपूर्व तरह से भाषित होने लगी। तो उसने द्रव्यानुयोग से पूरी बात चिंतित करके ये पूरा आगम का सारभूत अध्यात्म निचोड़ उसमें से निकाल के अपन सर्व श्रोता जीवों को दे दिया कि तेरा परमात्मा स्वरूप कैसा है, तेरा नायक भाव कैसा है, तू परम परिणामिक भाव लक्षण से लक्षित परमात्मा है, तेरी जो शुद्धता ऐसी अखंड रूप बच गई है कि तेरे बहिर्लक्षी पर्याय भावों में कितनी भी अशुद्धता चलती हो तो भी ये जानन देखनहार जो आत्मा नायक भाव है, जो परिपूर्ण है, कृतकृत्य है, अपने स्वभाव से ही अपने स्वरूप रूप विद्यमान है, ऐसा जो नायक भाव है, अवेद अकारक अवेदक परमात्मा है, उसकी जो बात तुझे गुरुदेव श्री ने 45 साल तक यही बात किया करी है, साथ साथ में जितनी पर्याय होती है, बहिर्लक्षी पर्याय मोहराग द्वेष वाली अज्ञान रूप और अंतरलक्षी पर्याय त्रिकाली द्रव्य के आश्रय से होने वाली सम्यक दर्शन नान चारित्राणी मोक्ष मार्ग रूप पर्याय, वो पर्यायों का ज्ञान नियम से कराते रहते हैं, मगर कैसे वो पर्यायों का ज्ञान होता है, किससे लक्ष्य से वो पर्याय का ज्ञान भी यथार्थ होता है, ये बात कहते कहते पर्यायों का ज्ञान कराते रहते हैं। तो पूज्य गुरुदेव श्री का उपदेश में ये दो बात मूल आती है, त्रिकाली द्रव्य की चर्चा और पर्याय का ज्ञान कराने की चर्चा, ये दो बात मूल पूज्य गुरुदेव श्री के उपदेश में आती है और यही बात का निचोड़ रूप ये 320वीं गाथा है। 320वीं गाथा जो पूज्य गुरुदेव श्री ने, जैसे समयसार की अमृतचंद्र आचार्य देव की टीका है, ऐसे जयसेन आचार्य देव की भी समयसार ऊपर टीका है। कुनकुन आचार्य देव का जो समयसार परमागम है उसके ऊपर जयसेन आचार्य देव की भी टीका है, अमृतचंद्र आचार्य देव की भी टीका है। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने 19 बार जाहिर में अमृतचंद्र आचार्य की टीका का प्रतिपादन किया, 1 से 415 गाथा, 278 कलश, सब उसमें अमृतचंद्र आचार्य की टीका का एक एक शब्द का एक एक लाइन का विस्तृतीकरण करके स्पष्टीकरण कर दिया। और उसमें भी जब जब समयसार चलता हो तो बार 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 जैसे आचार्य की कोई न कोई गाथा का भी उसमें रेफरेंस पूज्य गुरुदेव श्री देते रहते हैं, मगर मूल उसमें पूज्य गुरुदेव श्री को जयसेन आचार्य की टीका में से ये 320वीं गाथा बहुत ज्यादा पसंद आ गई। जैसे आचार्य भगवान जो कुछ भी लिखते हैं उसके जो परमागम बनते हैं वो एक एक उसकी अनुभूति की बूंद स्वरूप होते हैं, इसलिए उसमें कोई भी गाथा एक गाथा अच्छी और दूसरी गाथा नहीं अच्छी ऐसा कुछ नहीं होता है। सभी गाथाएं आचार्य भगवान की लिखी हुई होती है, वो प्रयोजनभूत होती है। कोई गाथाएं आदर करने के लिए प्रयोजनभूत होती है और कोई गाथाएं उसमें जो बात आती है वो निषेध रूप करके भी उसको प्रयोजनभूत किया जाता है। इसलिए आचार्य भगवान की जो भी गाथाएं हैं वो सभी गाथाएं प्रयोजनभूत है, मगर ज्ञानी जीव को और जिसको ज्ञानी होना है उसको भी जैसा उसका खुद का स्वरूप है, उसका जो महिमावंत पदार्थ है, जो अनादि से विद्यमान है, अनंत काल तक ऐसा न ऐसा विद्यमान रहने वाला है, उसकी चर्चा जो गाथा में आती है वो ज्ञानी को भी और जिसको त्वरित ज्ञानी होना है उसको भी वो गाथा ज्यादा पसंद आ जाती है। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री ने ये 320वीं गाथा जैसे आचार्य की टीका में से चुनकर उस पर
6 से 7 बार प्रवचन किए एक ही गाथा पर, जिसे अपने पास 3 तो छपे हुए हैं प्रवचन उसके, एक ये प्रवचन नवनीत में है जो पूज्य गुरुदेव श्री के 143 प्रवचन खास प्रवचन है, उसमें उसने समय सार की गाथाएं, नियम सार की गाथाएं, श्रीमद राजचंद्र जी के बोल, अलिंग ग्रहण के 20 बोल, 47 शक्ति, अव्यक्त के 6 बोल, नियम सार की जो 38 से 50 गाथा, 51 से 55 गाथा, 77 से 81 गाथा, परमार्थ प्रतिक्रमण की, ये सब गाथाओं का रहस्य उद्घाटन जो पूज्य गुरुदेव श्री ने किया, वो सब 143 प्रवचन पूज्य गुरुदेव श्री ने अपनी इच्छा से किया। और ऐसा भी उसमें पूज्य गुरुदेव श्री ने फरमाया कि ये प्रवचन छपेंगे, कभी बोला नहीं पूज्य गुरुदेव श्री ने, 9000 प्रवचन हुआ उसमें, कि ये प्रवचन छपेंगे, मगर ये 143 प्रवचन में ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री ने पुकार किया कि ये प्रवचन छपेंगे, ये प्रयोजनभूत प्रवचन है और प्रयोजनभूत विषय हमने लिया है, जो हमारा दैनिक सुबह का स्वाध्याय का विषय है, अलिंग ग्रहण के बोल, 47 शक्ति 116 गाथा, 47 अव्यक्त के 6 बोल, ये सब जो हमारे 320 गाथा, हमारे दैनिक जो सवेरे स्वाध्याय के जो प्रकरण है, ये सब का हम विस्तृतीकरण करेंगे और ये प्रवचन छपेंगे, उसमें ये 320 गाथा का प्रवचन भी आया हुआ है। जो अपन अभी सुन रहे हैं वो 79 का प्रवचन है, वो पूज्य गुरुदेव श्री ने खास प्रवचन में लिया है। बाद में एक अध्यात्म प्रवचन रत्नत्रय भी छपा है, उसमें 77 का प्रवचन है, जयसेन आचार्य की टीका, एक 70 की साल का प्रवचन छपा हुआ है 16वीं बार का, उसको ध्येय पूर्वक ध्येय में है, और बाकी के अभी 3 बार के प्रवचन छपने बाकी है। तो ये जो 320 गाथा की महत्वता है, 320 गाथा की जो ऊंचाई है, वो पूज्य गुरुदेव श्री को स्पर्श कर गई वो ऊंचाई, और उसमें से जो जो भी बातें हैं, इसका भाव बहुत गहराई से, कि कभी अपन ने ऐसा भाव दूसरी गाथाओं में नहीं सुना हो, इस तरीके की बातें ये प्रवचनों में आई है। इसे ये 320 गाथा का सबसे पहले पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन का उद्घाटन राजकोट में हुआ था। सबसे पहले पूज्य गुरुदेव श्री ने ये जयसेन आचार्य देव की टीका राजकोट में ये प्रवचन किए थे। पूज्य गुरुदेव श्री को कहने में आया कि हे गुरुदेव, आप यहाँ पधारे हो तो ये भव्य आत्माओं का हित कैसे हो जाए, उसको अपने स्वरूप की प्राप्ति कैसे हो जाए, उसके लिए ये 320 गाथा बहुत प्रयोजनभूत है। आप भी अपने प्रवचन में बोलते हो मगर वो गाथा जाहिर में लेते नहीं हो, तो ये हमारी विनंती है, कृपा करके ये गाथा आप राजकोट से शुरू करो। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने बोला कि गाथा तो ले ले मगर उसका कोई अनुवाद नहीं है अपने पास, ऐसा प्रश्न उठाया पूज्य गुरुदेव श्री ने शाम को माने कि रात्रि चर्चा में ये प्रश्न उठाया पूज्य गुरुदेव श्री ने। तो सब वहां जो लोग बैठते थे उसने बोला कि वो तो हो जाएगा साहब। तो पूज्य गुरुदेव श्री बोले कि कोई बात नहीं, तो हम ले लेंगे। रात को आदमी को सोनगढ़ भेजा गया, वो जयसेन आचार्य की टीका लेके उधर गया, अपने पंडित रत्न श्री हिम्मत भाई जी को बोला कि इतना इसका आप अनुवाद करके ये आप हमें अभी के अभी दो, क्योंकि ये गाथा सवेरे लेने वाली है, गुरुदेव सवेरे लेने वाले हैं। रातों रात इसका अनुवाद हो गया और सवेरे जब पूज्य गुरुदेव श्री की एक आदत थी कि वो जब उसको प्रवचन करना हो, स्वाध्याय कराना हो, तो 15-20 मिनट पहले आके बैठ जाते थे। तो जब पूज्य गुरुदेव श्री वितरागता की गद्दी पे आके बैठे, उससे पहले यहां पे 320 गाथा का अनुवाद मौजूद था। और वो पूज्य गुरुदेव श्री ने देखा तो पूज्य गुरुदेव श्री तो इतने हर्षित हो गए, इतने हर्षित हो गए कि हर्ष के आंसू निकल गए उसकी आंखों में से। इतनी ये गाथा उसको प्रिय थी, ये ऐसी कोई अभूतपूर्व अनमोल अलौकिक गाथा है। वो गाथा पूज्य गुरुदेव श्री के हाथ में आया अनुवाद, और पूज्य गुरुदेव श्री ने बोला कि हम आज से ये गाथा शुरू करेंगे। और उस टाइम उस वक्त पूज्य गुरुदेव श्री ने ये गाथा शुरू की। सबके हाथ में ये पेपर दिए गए और श्रोतागण भी खुश, और गुरुदेव तो अंदर से भी हर्षित, अपने स्वरूप अनुसंधान में भी हर्षित और बाहर से भी हर्षित। ऐसी कोई ये गाथा, कोई अभूतपूर्व अलौकिक गाथा कि जिसमें आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं है, आत्मा बंध का कारण भी नहीं है, आत्मा मोक्ष का कारण भी नहीं है, आत्मा बंध रूप भी नहीं है, आत्मा मोक्ष रूप भी नहीं है, सकाम अकाम निर्जरा होती है, सविपाक अविपाक निर्जरा होती है, उसको मात्र जानता है, और सर्वविशुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण वाला परमात्मा है, और उसके जो चार भाव है पर्याय रूप औदयिक सयोक्षमिक सायिक और औक्षमिक, वो चारों पर्याय भावों से पार, उससे शून्य, उससे रहित और उससे अभाव रूप परिपूर्ण परमात्म देव नायक भाव है, अखंड चैतन्य वस्तु है, अभेद चैतन्य वस्तु है, नित्य निरावरण परमात्मा है, एक रूप परमात्मा है, अनादि अनंत त्रिकार स्वरूप है, ऐसा गुणायक भाव, ऐसा त्रिकारी परम पारिणामिक भाव लक्षण से लक्षित अपने में रहने वाला गुणायक भाव, वो चार भाव रूप पर्यायों से भी पृथक है, उससे भी रहित है, ना तो वो पर्याय में द्रव्य आता है, ना तो वो द्रव्य में पर्याय जाती है। ऐसा जो एक शुद्ध विनायक भाव, ऐसा तत्व वो मैं, ऐसा अपरिणामी तत्व, ऐसा वो जो मेरा परम शुद्ध भाव, नित्य निरावरण भाव, वेद भाव, अखंड भाव, वो मैं हूं कि जिसमें पर्यायों का परिणमन ही नहीं है। पर्याय का परिणमन पर्याय में है मगर मेरे में नहीं है। ऐसा जो विनायक भाव को बताने वाली ये अपूर्व गाथा कि जिसमें मात्र जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना यही वर्त रहा है सभी जीव में, ऐसा बताने वाली ये गाथा, इसमें ये चार भावों से रहित परम पारिणामिक भाव, वो सर्व विशुद्ध परम पारिणामिक भाव लक्षण रूप ऐसा अभेद परमात्मा, वो भी उसका शुद्ध परिणाम से भी कथनचित भिन्न। पहले बोले कि बंद मोक्ष ही पर्याय से रहित, फिर बोले कि सम्यक दर्शन नान चारित्राणी मोक्ष मार्ग और मोक्ष की पर्याय से कथनचित सहित, ये सब बातें ये गाथा में भरी हुई है। जीवत्व भव्यत्व अभव्यत्व पारिणामिक भाव लक्षण, ये तीनों पारिणामिक भाव में कैसे है, उसमें जीवत्व क्या है, भव्यत्व क्या है, अभव्यत्व क्या है, जीवत्व के भी दो भेद कौन से है, अशुद्ध पारिणामिक और शुद्ध पारिणामिक, भव्यत्व और अभव्यत्व पर्यायगत योग्यता को क्या कहते हैं, कैसे उसको पारिणामिक में लिया है। उसके बाद में आत्मा है वो निष्क्रिय शुद्ध पारिणामिक है, कोई क्रिया उसमें नहीं है, सर्व क्रियाओं से पार, सर्व क्रियाओं का परिणमन से पार, ज्ञान की क्रिया चलती है उससे भी निष्क्रिय परमात्मा, ऐसा जो अपना शुद्ध स्वभाव, ऐसा जो अपना गुणायक भाव, ऐसा जो अपना त्रिकार भाव, ऐसा जो अपना अनादि अनंत भाव, उसको बताने वाली ये गाथा कि जिसमें लिखा कि ये सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण निज परमात्म द्रव्य वही मैं हूं, खंड ज्ञान में वो नहीं हूं, खंड ज्ञान माने अतीन्द्रिय ज्ञान खंड रूप है वो मैं नहीं हूँ। अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप परमात्मा अखंड है वो मैं हूँ। ऐसा ऐसा बहुत से विषय ये गाथा की परिपूर्णता को निर्दिष्ट करते हैं। ऐसा ये बहुत अलौकिक प्रकरण है। पूज्य गुरुदेव श्री ने तो इसका स्पष्टीकरण इतना किया है, इतना किया है कि अपन उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हैं। अपन तो गुरुदेव ने स्पष्टीकरण किया है, वो भाव को घोटना है अपने को कि ये गाथा में आचार्य भगवान अपना स्वरूप इस तरीके से बता रहे हैं। इसमें कहना आचार्य भगवान ये चाहते हैं, आचार्य भगवान अपना जानन लेखन हार स्वरूप सभी जीव का है उसकी इसमें घोषणा कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं। तो सभी जीव जानन देखन हार है, कोई जीव करने वाला नहीं है। शरीर की क्रिया हो, देह मन वाणी की क्रिया हो, रागादि भाव की क्रिया हो, एक समय की बहिर्लक्षी की अंतर्लक्षी क्रिया हो, कोई भी पर्याय का या तो पर का कर्ता त्रिकाली द्रव्य नहीं है, ऐसा अकर्ता स्वभावी आत्मा वो मैं हूं, ऐसा बताने वाली ये गाथा है। ये गाथा में इतना मर्म भरा है। अभी जो अपन आज सुन रहे थे, जो प्रकरण आया पूज्य गुरुदेव श्री ने चार नई से जो सिद्धि की, दो प्रकार की असद्भुत नहीं, दो प्रकार की सद्भुत नहीं, असद्भुत नहीं होती है वो अपना प्रमाण का विषय के बाहर जो चीजें हैं उससे कुछ अपने में होता है उसको असद्भुत बोला जाता है, और अपना प्रमाण का विषय द्रव्य पर्याय स्वरूप जो वस्तु है उसमें पर्याय में जो परिणमन होता है उसको सद्भुत नहीं बोला जाता है। पूज्य गुरुदेव श्री ने ग्यारहवीं गाथा के आधार से, और वो बात अध्यात्म की नई पंचाध्याय में आई है, उस अपेक्षा से स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री ने किया कि राग रूप जितनी नए है वो असद्भुत व्यवहार है, और ज्ञान की नई दो है और राग की भी दो नहीं है, असद्भुत उपचरित नहीं, असद्भुत अनुपचरित नहीं, वो राग में जाती है, और सद्भुत उपचरित नहीं और सद्भुत अनुपचरित नहीं वो ज्ञान में यानी कि प्रमाण के विषय में रहती है, द्रव्य में नहीं नहीं है। त्रिकाली द्रव्य में नई नहीं है, शुद्धात्मा में कोई नहीं है, नई नहीं है। शुद्धात्मा को बताने वाली जो ज्ञान का अंश है उसको शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं बोली जाती है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नई वो आत्मा को बताती है, ऐसा नई से नहीं उठना, मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा कहने वाली नई को शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं कहती है। इसे अपनी जो स्वभाव की महिमा है, अपना स्वभाव की जो परिपूर्णता है, अपने स्वभाव की जो कृतज्ञता है, उसकी ही ये चर्चा इसमें आई है 320 गाथा में कि तू स्वभाव से ही ज्ञाता दृष्टा है, तू स्वभाव से ही जीव जाननहार है, कुछ कर्ता भोक्ता नहीं है, अनादि से जीव ने ये प्रवृत्ति चालू रखी है कि मैं पर का कर्ता नहीं हूं। ऐसा तो उसको मालूम है कि पर का कर्ता नहीं हूं, ऐसा भी उसको मालूम है कि मैं बहिर्मुख पर्याय होती है उसका कर्ता नहीं हूं, मगर अंतर्लक्षी पर्याय का कर्तापना उसको छूटता नहीं है, उसका भी जीव अकर्ता है, होने योग होती है पर्याय, परिणाम होने योग होता है, उसका कोई कर्ता जगत में नहीं है, वो होने योग परिणाम होता है, उसको आत्मा जाननहार रहता है। कोई भी परिणाम हो, अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट होता है उसका कर्ता आत्मा को कहना वो भी सचमुच में उपचार है, उसका भी कर्ता आत्मा नहीं है, आत्मा में अकर्ता स्वभाव बना है। अकर्ता स्वभाव को देखना, मैं अकर्ता स्वभाव हूं, उसका नाम ही सचमुच में ऐसा कहा जाता है कि ये पर्याय अपेक्षा से पर्याय में कर्ता हुआ, बाकी सचमुच में वो त्रिकाली द्रव्य कर्ता कभी होता नहीं है। पर्याय में पर्याय का कर्तापना है, त्रिकाली द्रव्य तो अनादि अनंत अकर्ता रहता है। ऐसा ये अकर्ता स्वभावी आत्मा, ऐसा ये गिनायक भाव, ऐसा ये परम पारिणामी भाव लक्षण से लक्षित जो परमात्मा, अभेद स्वरूप आत्मा, चैतन्य परमात्मा, चैतन्य लक्षण से लक्षित गिनायक भाव, इसका ये प्रकरण है। वो अपन इसमें 320 गाथा में शुरू करते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में ये पांच प्रवचन हुए हैं, उसमें जो जो विषय आया है वो ही विषय उसमें शुरू से पहले से आएगा। नेत्र का दृष्टांत से आचार्य भगवान ने इतना स्पष्टीकरण किया है कि नेत्र का दृष्टांत ही ऐसा है कि प्रत्येक जीव को रोज वो अनुभव में आता है। दैनिक अनुभव वाली प्रक्रिया जो उसकी चलती है, ऐसा दृष्टांत आचार्य भगवान ने इसमें दिया है। नेत्र कर्ता क्या है, नेत्र का स्वभाव क्या है, नेत्र क्या कर सकता है, क्योंकि मात्र देखता है, मात्र देखता है। शरीर परिणाम को प्राप्त ये नेत्र, ये चक्षु, वो शरीर का कोई भी अंग है, उसका भी कुछ कर नहीं सकता। पर का तो नहीं कर सकता, पर का करने का तो प्रश्न ही नहीं है, मगर जिसमें वो ये चक्षु इंद्रिय है, जिसमें चक्षु है ये शरीर में, वो चक्षु अपना शरीर का कोई भी परिणाम भी कर नहीं सकता। इसलिए पुद्गल में जो चक्षु है वो पुद्गल का भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही आत्मा जो जाननहार है, जीव चैतन्य तत्व है, ज्ञायक तत्व है, वो ज्ञायक तत्व भी अपने परिणाम का कुछ कर नहीं सकता। वो मात्र जानता है, मात्र जानता है, मात्र देखता है, मात्र जानता है। ऐसे चक्षु देखती है, ऐसे आत्मा मात्र जानन देखनहार है, ऐसा इसमें प्रथम दृष्टांत से ही कहना चाहता है। अपन पहले गाथा एक साथ में बोलेंगे, सबके पास है कई।
दिथि सयम पीड़ानम अकारयम कह वेदयम चेव जान दीय बंद मोक्षम समुदयम चरम चेव यम नेत्र ते मज ज्ञान नति कारक नति भेदकारे आने जत उदय निरजरा बंदते मज मोक्ष।
उसकी तात्पर्य उत्पत्ति का जैसे ना आचार्य ने जो लिखी है टीका, टीका यानी विस्तार, जो उसने जो विस्तार किया है उसको तात्पर्य वृत्ति नाम दिया गया है, और अमृतचंद्र आचार्य की टीका यानी विस्तार का नाम आत्मख्याति टीका है। तो ये तात्पर्य वृत्ति टीका में क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाहते है आचार्य भगवान, ये मेरे पास तो ये जेरोक्स किया हुआ है हिंदी में। तात्पर्य वृत्ति उसका हिंदी है। अब उसी ही कर्तृत्व भोक्तृत्व के अभाव का विशेष प्रकार से समर्थन करते हैं। कर्तृत्व और भोक्तृत्व के अभाव का विशेष प्रकार से समर्थन करते हैं। दिथि स्वयं किराणम अकार्यम तह वेदयम चेव, जिस प्रकार नेत्र अग्नि रूप दृश्य को देखता है परंतु अग्नि रूप वस्तु को प्रज्वलित करने वाले पुरुष के समान उसका कर्ता नहीं है। जिस प्रकार नेत्र, नेत्र माने ये चक्षु, वो जो चक्षु जो है वो अग्नि रूप दृश्य को देखता है, वो अग्नि रूप दृश्य है बाहर में, तो चक्षु क्या करती है, कि मात्र उसको देखती है, उसको जला भी नहीं सकती, उसको भी बुझा भी नहीं सकती, वो मात्र देखती है। चक्षु क्या करती है? मात्र देखना उसका काम। ऐसे आत्मा मात्र जानना मेरा काम। जिसे चक्षु मात्र देखती है ऐसे आत्मा मात्र जानता है। तो यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि जैसे जिस प्रकार नेत्र अग्नि रूप दृश्य को देखता है, उसका संबंध भी एक दूसरे का कहा जाए तो मात्र पर पदार्थ को देखना नेत्र से ऐसा व्यवहार रूप संबंध कहा जाता है। नेत्र अग्नि रूप दृश्य को देखता है, परंतु अग्नि रूप वस्तु को प्रज्वलित करने वाले पुरुष के समान उसका कर्ता नहीं है। अग्नि रूप जो वस्तु है उसको जो भी कोई पुरुष उसको प्रज्वलित माने कि सलगाता है, इस तरीके से नेत्र उसको कुछ कर सकता नहीं है। दूसरा जो पुरुष है उसको वो जलाता है, ऐसा नेत्र देखती है मात्र, वो कुछ उसको कर नहीं सकती है, मात्र देखना उसका कार्य है। जैसे नेत्र देखती है ऐसे आत्मा के ऊपर भी ये उतारेंगे, ये दृष्टांत देके सिद्धांत पर ले जाएंगे आचार्य भगवान। जो अग्नि रूप वस्तु को प्रज्वलित करने वाले पुरुष के समान उसका कर्ता नहीं है, उसी प्रकार तपे हुए लोह पिंड के समान वह नेत्र उस अग्नि को अनुभव रूप से भोगता नहीं है, वेदता नहीं है। तपे तपे हुए माने तप्तायमान हुआ जो लोहे का पिंड है वो अग्नि के संयोग में जाता है, तो वो उसको भोक्ता बना उसका अग्नि का लोहे के साथ में है ऐसा कहा जाता है। मगर चक्षु है, वो चक्षु तो मात्र उसको देखती है, वो उसको जला भी नहीं सकती, वो उसको बुझा भी नहीं सकती, वो उसका वेदन भी नहीं कर सकती, वो मात्र दृश्य पदार्थ जो दिखते है उसको नेत्र मात्र देखती है। नेत्र का कार्य मात्र देखना है, ऐसा इसमें कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार नेत्र अग्नि रूप दृश्य को देखता है, परंतु अग्नि रूप वस्तु को प्रज्वलित करने वाले पुरुष के समान उसका कर्ता नहीं है, उसी प्रकार तपे हुए लोहपिंड के समान यह वह नेत्र उस अग्नि को अनुभव रूप से भोगता नहीं, वेदता नहीं। मान के अग्नि और लोहा को भोक्ता पने का संबंध कहा जाता है, मगर उससे पार जो नेत्र है, उसके पार जो दृष्टि है, उसके पार जो चक्षु है, वो तो मात्र उसका जो कार्य वहाँ होता है उसको मात्र देखती है, वो उसको कुछ कर सकती नहीं है। इसलिए ये नेत्र है वो अकर्ता स्वभावी है, वो उसको देखती है मगर उसको कुछ कर सकती नहीं है। वो अभोक्ता है, वो भोक्ता जहाँ पना है उसको देखती है मगर वो भोग सकती नहीं है। इसलिए नेत्र का काम मात्र देखना है, मात्र चक्षु देखती है, वो कुछ करती की वेदन करती नहीं है, ऐसा नेत्र का उदाहरण देके उसके सिद्धांत पर आत्मा में आचार्य भगवान ले जा रहे हैं। इसी प्रकार शुद्ध ज्ञान भी, इसी प्रकार शुद्ध ज्ञान भी माने कि शुद्ध आत्मा भी, शुद्ध आत्मा है वो शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा है, इसलिए उसी प्रकार शुद्ध ज्ञान भी, शुद्ध ज्ञान भी माने कि त्रिकारिक नायक भाव भी, अकर्ता स्वभाव भी, अभेद स्वभाव भी, परिपूर्ण स्वभाव भी, कृतकृत्य स्वभाव भी, वो शुद्ध ज्ञान भी अपना अभेद रूप से शुद्ध ज्ञान परिणत जीव भी, एक शुद्ध ज्ञान भी माने कि त्रिकारी विनायक आत्मा भी और शुद्ध ज्ञान परिणत जीव, शुद्ध ज्ञान परिणत जीव माने परिणामी द्रव्य माने कि जो शुद्ध ज्ञान अपना त्रिकारी विनायक भाव है, उस रूप जो अपनी पर्याय में विनायक की सन्मुखता वाला जो परिणमन हो गया है उसको बोला जाता है शुद्ध ज्ञान परिणत जीव। अभी वो जीव का बहिर्मुख परिणमन था, मोरा द्वेष रूप परिणमन चल रहा था, परसन्मुक्ता वाला परिणमन चल रहा था, वो परसन्मुक्ता वाला परिणमन छूट के मात्र में देखनहार जाननहार हूँ उसका उसको ख्याल में आया, तो ऐसा जो जीव है उसका जो पर्याय का परिणमन है वो स्व सन्मुख हो गया, शुद्ध ज्ञान की सन्मुख हो गया। शुद्ध ज्ञान तो कर्ता भोक्ता नहीं है, त्रिकाली द्रव्य तो कर्ता भोक्ता नहीं है, मगर शुद्ध ज्ञान की तरफ जिसका वलन हो गया, जिसकी दृष्टि हो गई, जिसका अभेद रूप परिणमन हो गया, जिसने मैं ये नायक भाव ही मैं हूँ ऐसा उसमें अपनापन स्थाप के जिसका परिणमन हो गया, ऐसा शुद्ध ज्ञान परिणत जीव भी स्वयं शुद्ध उपादान रूप से न करता है या न भोगता है। ऐसा जीव भी विनायक भाव तो करता भोगता नहीं है, मगर जो विनायक भाव की सन्मुख होके जिसका उस रूप परिणमन हो गया, विनायक भाव से अभेद होके परिणमन हो गया, ऐसा शुद्ध ज्ञान परिणत जीव भी वो भी परिणाम का कर्ता भोक्ता नहीं होता, वो भी मात्र जानन देखन रूप ही रहता है। ये शुद्ध ज्ञान परिणत जीव किसे बोलते हैं कि जो जीव अपनी पर्याय में अज्ञान दशा छोड़कर ज्ञान दशा जिसकी पर्याय में प्रकट हो जाती है उसको शुद्ध ज्ञान परिणत जीव बोला जाता है। शुद्ध ज्ञान परिणत जीव माने कि जो परिणाम सोगानी जी बोलते हैं ना, परिणाम परिणम गया, मैं तो यूं का यूं रह गया, ऐसा मैं तो यूं का यूं रह गया, उसी पर जिसका लक्ष्य चला जाता है, उसी पर जिसका परिणमन चला जाता है, और परिणामी के ऊपर उसकी त्राटक लग जाती है कि मैं यही हूं, मैं यही हूं, मैं अवैध परमात्मा हूं, ऐसा जिसका वरण उस तरफ चला जाता है उसको शुद्ध ज्ञान परिणत जीव बोला जाता है। शुद्ध ज्ञान परिणत जीव होता है उस टाइम पर्याय का परिणमन भी चालू रहता है और द्रव्य स्वभाव की तरफ उसका लक्ष्य चला जाता है। पर्याय और द्रव्य दोनों एक कभी नहीं होता है। पर्याय और द्रव्य का जो पूर्व पर्यायों में विकल्प चलता था कि ये पर्याय है ये द्रव्य है, ये पर्याय है ये द्रव्य का मेरे को लक्ष्य करना है, पर का लक्ष्य मेरे को छोड़ना है, ऐसा द्रव्य पर्याय का जो विकल्पात्मक परिणमन चल रहा था वो भेद विकल्प छूट जाता है, उसको बोला जाता है कि ये जीव शुद्ध ज्ञान परिणत हो गया। विकल्प छूटता है, पर्याय नहीं छूटती है, पर्याय पर्याय रूप रहती है, द्रव्य द्रव्य रूप रहता है, मगर पर्याय और द्रव्य उस दोनों का विकल्प छूट जाता है उसको शुद्ध ज्ञान परिणत जीव बोला जाता है। अभी ना तो उसको पर्याय है ऐसा विकल्प है, ना तो उसको ये द्रव्य है ऐसा विकल्प है, ऐसा विकल्प रूप परिणमन जो चलता था वो विकल्प छूटता है। द्रव्य पर्याय स्वरूप अभेद में भेद भासता नहीं है, अभेद में भेद दिखता नहीं है, उसको बोला जाता है शुद्ध ज्ञान परिणत जीव। जिसने अभेद की सन्मुखता कर ली, जिसने अभेद में अहम कर दिया, जिसको ये मैं नायक भाव ही मैं हूँ ऐसा परिणमन हो गया पर्याय में, उसको बोला जाता है शुद्ध ज्ञान परिणत जीव। तो शुद्ध ज्ञान भी परिणाम का कर्ता भोक्ता नहीं है और शुद्ध ज्ञान परिणत जीव भी कर्ता भोक्ता पर पदार्थ का भी नहीं है। अशुद्ध परिणाम उसकी पर्याय में होता है उसका भी कर्ता भोक्ता नहीं है, और प्रकट रूप शुद्ध परिणाम हुआ वो होता ही रहता है, होता ही रहता है। निर्विकल्प दशा में तो वो मात्र जानन देखना रहता है, और बाद में विकल्प आता है तो भी परिणाम में जो जो क्रियाएं बची है उसको दूर रह के जानता है, वो जानने देखने वाला है, कुछ करने वाला नहीं है। ना तो पर में कुछ फेरफार कर सकता है, ना तो अपनी पर्यायों में कुछ फेरफार कर सकता है। पूज्य गुरुदेव श्री ने ये 320 की गाथा के पहले 308 से 311 गाथा चली गई, उसमें क्रम नियमित पना निकाला, क्रमबद्ध पर्याय निकाली, जो द्रव्य की जो समय में जो पर्याय जिस क्षेत्र में जैसी होने वाली है ऐसी ही होती है, उसका कोई कर्ता नहीं है। परिणाम सत है, परिणाम अहेतुक है, परिणाम निरपेक्ष है, परिणाम अपनी परिणमन क्रिया से स्वयं होता है प्रगट, उसको कोई करने वाला नहीं है। मैं मात्र जानने देखने वाला हूँ, मेरा स्वभाव मात्र जानना देखना है, ऐसा जानना देखना ये 320 गाथा में बता रहे हैं। ऐसा जानना देखना सभी भव्य मोक्षार्थी जीवों को प्रगट अपनी पर्याय में हो जाए, ऐसी मंगल भावना।